मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 20 मई 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत में जो आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जो अभी सरकार ने घोषणाएं की हैं उन्हीं से संबंधित, लेकिन कुछ इनसे हटकर जो उपाय होने चाहिए थे उसके बारे में बात करूंगा। और इसका पर्पस सिर्फ ये आपको बताना है ताकि आपके अंदर अर्थशास्त्र की एक मौलिक दृष्टि पैदा हो सके, मौलिक दृष्टि न कहें कि आप कुछ उपाय अपनी तरफ से सोच सकें, क्योंकि पिछले दो दिनों से हम लोग खासकर आप देख रहे हैं कि जो राहत पैकेज हमारे सामने आया है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अम्फन बढ़ते बढ़ते क्या स्थिति तक आ गया है, वो सुपर साइक्लोन बन गया है, अब आप देख रहे हैं, और इसको लेकर के लगातार तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल के न्यूज में, रेडियो न्यूज में आपने देखा कि बहुत विस्तार के साथ बताया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया। हालांकि मुझे लगता है कि आपने जब वो न्यूज सुनी होगी तो आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, अब क्या है इसमें, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, फलाना कर दिया, अब ये तो सामान्य सी बातें हैं। दोस्तों, सामान्य सी बातें हैं, लेकिन आपके लिए ये सामान्य सी बातें नहीं हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं जहां ये तूफान आने वाला है, तो वहां जो सारा दायित्व तो होगा वहां के लोगों को बचाने का, वो आपके ऊपर होगा। आप उसके केंद्र में होंगे, आप उसके कोऑर्डिनेटर होंगे, लोग आपके आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे और पूरी जनता आपकी ओर देख रही होगी अपनी रक्षा के लिए। तो ये भले ही छोटी छोटी बातें हैं, आपको मालूम तो होना चाहिए कि भैया आपको क्या क्या निर्णय लेने हैं। और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, ये बकायदे आपके सिलेबस में है। अब आप देखिए कि सिलेबस में है, आप सब पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय आपदा किसे कहते हैं, इसके लिए क्या एक्ट बनाया गया है, कौन कौन सी टीमें बनाई गई हैं, यह आप पढ़ लेंगे, लेकिन उसका अप्लाइड फॉर्म आप कैसे जानेंगे, व्यावहारिक रूप कैसे जानेंगे? और व्यावहारिक रूप आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है कि कभी हम इस पर और विस्तार से बातें करें, लेकिन मैं अपने ऑनलाइन पेड स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि वो खासकर इन छोटी छोटी बातों पर भी बकायदे ध्यान दें। इसलिए क्योंकि फिर जब, ताकि जब आप लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चरों को आप बिल्कुल इससे अटैच करके जान सकें, राइट? तो दोस्तों देखिए कि कैसे छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। बताया गया कि जो NDRF की टीम है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इतनी टीमें डिप्लॉय कर दी गई हैं। देखिए अभी तूफान आया नहीं है, आने वाला है, अब पक्का है कि वो आएगा ही। तो तूफान जो आपदा होती है, अगर आप उसकी उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उसका चरण है एक आपदा का पूर्वानुमान लगाने का, तो अगर आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं तो आपको पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। अब आप देखिए कि वहां से कैसे लोगों को निकाला जाएगा। बकायदे वहां जितनी टीम डिप्लॉय की गई है उन सबके पास वायरलेस सेट है, ताकि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाए तो बकायदे वायरलेस सेट्स के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकेंगे। बकायदे सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उनको बकायदे मैसेज भेजकर अलर्ट किया जा रहा है, और जो मैसेज भी दिया जा रहा है वो लोकल लैंग्वेज में दिया जा रहा है ताकि लोग वहां के लोग समझ सके। तो कैसे यहां टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की मदद ली जा रही है, कैसे आपने बकायदे वहां देखा कि अग्निशमन, यानी फायर ब्रिगेड जिसको कहते हैं, अग्निशमन की टीम भी डिप्लॉय कर दी गई है, वन विभाग की टीम भी भेज दी गई है, क्योंकि कहीं अगर अचानक आग लग गई तो फिर आप कैसे करेंगे, ताकि आप उसे बुझा सकें। वन विभाग की टीम है ताकि वो क्षेत्र जो होंगे, वनीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों को, रास्तों को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके पास अपना पूरा अमला होता है, उनकी आप मदद ले सकें। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, ये इन छोटी बातों को आपको समझना होगा, है ना? तो जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को अभी थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि जब वो लेक्चर सुनेंगे इस विषय पर तो ये बातें आपके रिवाइव हो सकें, और इन बातों के माध्यम से फिर आप लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो ये शुरुआत है, है ना? इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपसे लिपू लेख एक स्थान है जिसके बारे में बात की थी, जहां भारत और चाइना ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोलने का निर्णय लिया है, और अब आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे अब यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है। नेपाल ने बकायदे एक अब अपना मैप जारी कर दिया है, जिसमें इस स्थान को उसने अपने अंडर में दिखाया है कि इस स्थान पर हमारा अधिकार है। और इस पर अब आपको आर्टिकल्स भी पढ़ने को धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं और एडिटोरियल कमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि नेपाल ये जितनी भी गतिविधियां कर रहा है ये बेसिकली चाइना के उकसाने पर कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि चाइना की मदद से कर रहा है, है ना। तो यही इम्पॉर्टेंट होती है बात फ्रेंड्स, कि कोई घटना जैसे ही घटित होती है वैसे ही आप समझ सकें कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तभी आप उसको पकड़ सकेंगे। और यदि किसी घटना को आप शुरू से पकड़ लेते हैं तो फिर बाद में आपको बहुत मदद उससे मिलती है। देखिए ठीक इसी तरह से कल मैंने आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैंने आपको कहा था कि इसमें जो WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पूरे देश इसके मेंबर्स होते हैं। आज के अखबारों में आपको जो पढ़ने को मिलेगा, यहां तक एडिटोरियल कमेंट्स मिलेंगे, तो उसमें आपको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली शब्द मिलेगा। तो अब आप जान गए कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ना, इसकी अपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था, यही सारे निर्णय लेती है। जितने भी देश इसके सदस्य होते हैं उनके जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और आपने देखा किस तरह की भी सूचनाएं हैं कि भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, मतलब WHA जो उसका जो बोर्ड होगा, बोर्ड का मेंबर है ना, उसके तो महानिदेशक ही होते हैं, बोर्ड का जो मेंबर है वो भारत को बनाने की बात चल रही है। कुछ अखबार लिख रहे हैं कि बन भी गया है, क्या जो भी हो, लेकिन संभावना है। कल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बकायदे मीटिंग हुई थी, 73rd मीटिंग हुई, और उसमें अब यह प्रस्ताव पारित हो गया है कि नहीं, बकायदे इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि चाइना ने शुरू में विरोध किया लेकिन उनकी भी चल नहीं पाई है। तो अब बकायदे उसका एक बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। फ्रेंड्स आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं। हम लोगों ने जो आर्थिक प्रोत्साहन के लिए जो पैकेज दिया गया है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट करने के लिए, तो उसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि अब अखबारों में एडिटोरियल भी आने लगे, आर्टिकल्स भी आने लगे हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लोग अपने अपने ढंग से उसका विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों ठीक है, वो विश्लेषण चल रहे हैं, आइए हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें। हम देख रहे हैं इसको, हम सिविल सर्विस की मैं तैयारी कर रहा हूं मान लीजिए, तो मैं इसको किस तरीके से देखूंगा। ठीक है, मैं आलोचना कर रहा हूं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो क्या ठीक होता? अब मैं ये भी तो बताऊं कि भाई तो फिर सरकार को क्या करना चाहिए था, आप बताओ। आप फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनो, आप मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी बनेंगे, तो आप क्या सरकार को सजेस्ट करेंगे अगर आप इन सब बातों से सहमत नहीं हैं, है ना। तो मैं आपको कुछ दो तीन इस तरह के उपाय बताने जा रहा हूं। देखिए जब हम इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की बात करते हैं, क्योंकि आपको प्रोत्साहन देना है, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल छत विक्षत हो गई है और आप इसे उभारना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए नीति लेकर के आते हैं। तो देखिए जब हम बाजार की बात करते हैं तो हमारे सामने दो पक्ष होते हैं, एक होता है सप्लाई साइड और दूसरा होता है डिमांड साइड। सप्लाई साइड का मतलब है कि हम वस्तुओं की पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। डिमांड साइड क्या होता है कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। कुछ अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि सरकार ने अभी जो राहत पैकेज घोषित किए हैं वो बेसिकली सप्लाई साइड को लेकर के किए गए हैं, उसमें डिमांड साइड पर ध्यान नहीं दिया गया है, राइट। जैसे मान लीजिए डिमांड साइड पर कैसे ध्यान नहीं दिया गया है, जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है आप इतना कर्ज ले सकते हैं, रेहड़ी वाले कर्ज ले लें, जो MSME है वो कर्ज ले लें, किसान कर्ज ले लें, और सरकार उसकी गारंटी देगी। ठीक है, सरकार अपनी तरफ से अच्छा सोच रही, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम क्या होंगे? दोस्तों मैं कर्ज ले लूंगा तो मैं तो ये मान करके चल रहा हूं कि सरकार ने इसकी गारंटी ली है तो मेरे ऊपर तो कुछ होना ही नहीं है, तो मैं वो कर्ज ले लूंगा, अपना खर्चा कर दूंगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अब संभावना नहीं दिख रही है, मैं कर्ज वापस नहीं करूंगा। अब सरकार क्या कर लेगी? एनपीए में चला जाएगा ना, एनपीए में सब चला जाएगा। तो इस तरह से जो बैंकों के घाटे हैं वो लगातार बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे डिमांड कैसे क्रिएट हुई? डिमांड तो तब क्रिएट होती जब मैं कर्ज लेकर के, जो मान लीजिए कि मैंने 1,00,000 रुपए कर्ज लिया है, तो इस 1,00,000 रुपए को अब मैं लोगों तक पहुंचाऊं, प्रोडक्शन बढ़ाऊं, अपनी चीजें प्रोड्यूस करूं, जो कुछ भी करूं। लेकिन इस आप देखिए कि कॉरपोरेट टैक्स के दौरान क्या हुआ था, सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया, उससे लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान भी हुआ। लेकिन जब कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया गया तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनको फायदा हुआ, लेकिन उस फायदे को उन्होंने क्या नीचे तक पहुंचा दिया? क्योंकि सरकार यही मान करके चल रही थी कि ये जो पैसा बचेगा ये नीचे तक जाएगा। उन लोगों ने अपने पास रख लिया, उन्होंने अपने सामान की कीमतें कम नहीं की, उन्होंने कोई अपनी फैक्ट्री का विस्तार नहीं किया, कुछ नहीं किया। फैक्ट्री का विस्तार तो कोई तभी करेगा ना जब डिमांड उनको दिखे। अगर मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा होगा लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं जो चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं उसकी मांग नहीं है, तो मैं क्यों अपने पैसे का इस्तेमाल एक और फैक्ट्री में लगाने के लिए करूंगा, मैं अपना पैसा अपने पास रखूंगा। तो दोस्तों उससे फिर डिमांड जनरेट नहीं होती है। तो डिमांड किस तरीके से जनरेट होती है, अब आप देखिए कि मान लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस है। सरकार ये मान लीजिए घोषित कर दे, अब ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, है ना, मत सोचिएगा कि मैं किसी अर्थशास्त्री के रूप में बात कर रहा हूं। मान लीजिए सिविल सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आ गया कि आप सरकार को क्या सजेस्ट करेंगे, आ सकता है, तो मैं पहली बात लिखूंगा कि जीएसटी के रेट आधे कर दें, और सरकार बकायदे उसमें टाइम भी रखे कि ये जो जीएसटी के रेट आधे किए गए ने, ये केवल 9 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 1 साल के लिए है, बस इसके बाद हम पुराने रेट पर आ जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कार खरीदनी है, कार पर जीएसटी रेट मान लीजिए 28% है, अब सरकार ने उस पर उसको घटा करके आधा कर दिया, यानी कि 14% कर दिया, और साल भर का समय दे दिया है, तो जब 6 महीने 7 महीने हो जाएंगे मैं टालता रहूंगा, 8 महीने हो जाएंगे, तो फिर मुझे लगेगा कि भैया अब तो जीएसटी रेट इसका बढ़ जाएगा यार, इस चीज की कीमत बढ़ जाएगी, तो मैं खरीदने के बारे में सोचूंगा, तो मैं खरीद लूंगा, तो डिमांड जनरेट हो गई। तो जो भी वस्तुएं लोगों को खरीदनी होंगी वो सोचेंगे कि अरे अभी तो ये सस्ती मिल रही है क्योंकि टैक्स कम हो गया, तो उसे खरीदना शुरू कर देंगे, तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी मार्केट में। दूसरा दोस्तों कि आप इनकम टैक्स की दर कम कर दीजिए, इनकम टैक्स की दर टॉप पर है ना 30%, वहां से 5% या 10% कम करना शुरू कर दी। तो जब इनकम टैक्स की दर कम होगी तो लोग टैक्स, जो पैसा टैक्स में दे देते वो पैसा अपने पास रखेंगे, और अगर वो अपने, तो ये पब्लिक के पास है ना, ये पैसा पब्लिक के पास, किसी के पास से आना नहीं है कि बैंक से पैसा पब्लिक लेगी या किसी दुकानदार या इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा पब्लिक लेगी, ऐसा तो नहीं है। आपने सीधे पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास ही रहने दिया, वो पैसा जो आप ले लेते पब्लिक के पास ही आपने छोड़ दिया, तो पब्लिक उसे खर्च करेगी, तो इस तरीके से डिमांड जनरेट हो जाएगी। और तीसरा है, सरकार को चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट एकदम कि ठीक है ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, ये डेवलप करेंगे, ये डेवलप करेंगे, और तेजी से उस पर काम करना शुरू कर दे, तो आप देखिए कि कैसे डिमांड जनरेट नहीं होती है। अमेरिका इसका तो सबसे अच्छा उदाहरण है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और खासकर जब वहां महामंदी की स्थिति आई थी, तो अमेरिका ने यही किया, जबरदस्त रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगा, और वो उसका इतना जबरदस्त किस्म का अर्थशास्त्र का आपका जो अर्थव्यवस्था की वो न्यू बन गई कि लोग कहते हैं कि अमेरिका जो आज विश्व एक सुपर पावर है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, उसका बहुत बड़ा श्रेय वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को है। तो इस तरह से देखिए कि बकायदे एक मैंने तीन उपाय बताए हैं, देखिए जो भी मैं एक स्टूडेंट के रूप में मैं आपको बता रहा हूं, इन तीन उपायों के जरिए बिल्कुल डिमांड क्रिएट होती है और डायरेक्ट ये पैसा लोगों के हाथ में जाता। अभी जो व्यवस्था की गई है उसमें पैसा इनडायरेक्ट है, और वो भी संदेहास्पद है कि मैं पैसा लेने के बाद उस पैसे को नीचे तक पहुंचाऊंगा या नहीं पहुंचाऊंगा, इसीलिए लोगों को डाउट हो रहा है कि ये जो राहत पैकेज है ये डिमांड क्रिएट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आर्थिक प्रोत्साहन के उपाय के रूप में कुछ बातें आपको बताई हैं, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, पवन चौधरी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आयुष मिश्रा, अंकित तिवारी, आकांक्षा दलवी पालघर महाराष्ट्र से, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से, और आशुतोष कुमार जायसवाल चंदौली उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।